ते कोई जायका है ते ना ही कोई बो कार्बन मोनोऑक्साइड दा अलार्म अपने कार विच हर उस थां विच लाओ जिथे तुसी सोंदे हो ते हर महीने अलार्म नु टेस्ट भी जरूर करो। ए निक्की जिही सावधानी तुहानू ते तुहाडे घर आलियां नु मरण तो बचा सकदी है। नवंबर दी 1 तरीक तो लैके 7 तक कार्बन मोनोऑक्साइड दी जगराहता दा हफ्ता है। जानकारी लई संपर्क करो brampton fire.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का कम्युनिटी ग्रांट प्रोग्राम एडवांस ब्रैम्पटन फंड दरखास्तों के लिए खुला है और दरखास्त देने के लिए अभी भी वक्त है। ब्रैम्पटन में गैर मुनाफा बख्श और खैराती इदारे दो फंडिंग स्ट्रीम्स के जरिए फंडिंग के लिए दरखास्त दे सकते हैं। हम इस मुनफरिद और काबिल कदर किरदार को तस्लीम करते हैं जो गैर मुनाफा बख्श शोबा कम्युनिटी की जरूरियात को पूरा करने वाले प्रोजेक्ट और खिदमात की फराहमी में अदा करता है। मजीद जाने और आज ही brampton.ca/abf पर जाकर ऑनलाइन दरखास्त दें।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको 12 नवंबर को सस्को सेंटेनियल जो कि 11333 ब्रैम्बी रोड इन ब्रैम्पटन पर फर्स्ट एवर दिवाली मेले पर इनवाइट करता है। मुकामी और बैन अल-अक़वामी फनकारों की परफॉर्मेंसेस के साथ साथ रोशनियों के त्यौहार का जश्न मनाएं, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज में हिस्सा लें, वेंडर के मजेदार खाने और शहर में चलाए जाने वाले आतिशबाजी के सबसे बड़े मंजर को एंजॉय करें। प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात के लिए विजिट करें www.brampton.ca/diwali।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
Mahal in Rexdale. For more information, you can call 416-679-9991. 416-679-9191.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈਲਡ ਰਾਈਡਸ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ 7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਗੋਟ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਮਾਮ ਹੀ 2023 ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਜਾਂ forddealers.ca ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
ਇਸ ਫਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਨ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਮਤ $487,990 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਡੀਅਮ ਥਾਨੀ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਆਵਾਜਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਟਨ ਫਿਊਚਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੱਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। GTA ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ stationside.ca।
आतिशबाजी के नए कानून के तहत ब्रैम्पटन में आतिशबाजी के इस्तेमाल, खरीदारी, खारिज होने वाले मादा, डिस्प्ले या फरोख पर सख्ती से पाबंदी है। इसमें तमाम चमकने वाली रोमन मोमबत्तियां, रॉकेट, ग्राउंड स्पिनर्स, फवारे, उड़ने वाले लालटेन, बम धमाके वगैरह शामिल हैं। अमल न करने पर आपको $500 से $1,00,000 तक फाइन हो सकता है। ब्रैम्पटन के रहायशी, नए साल की शाम, कैनेडा डे या दिवाली की आतिशबाजी शहर के ज़ेर क़यादत जगहों पर एंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिए brampton.ca/fireworks।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
جی صاحب، پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ جناب فیاض بلانا صاحب سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا سپورٹ کرنے کا، سپانسر کرنے کا۔ میں آپ یقین کیجئے گا، میں ایگزیجریٹ قطع نہیں کرنا چاہتی۔ الحمدللہ وی گیٹ ریسپانس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ناؤ، اراؤنڈ دا ورلڈ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی سروسز ہیں، آپ کا بزنس ہے، تو موسٹ آف دا رسپانس آپ کو کینیڈا سے چاہیے ہوتا ہے، مگر زبان عالم نکار آیا ہے خدا۔ بہت سے لوگ جو باہر ہیں، ان کے ریلیٹیوز یہاں ٹورنٹو میں بھی ہیں، اور آپ کا پیغام یا آپ کی تشہیر جو ہے وہ اراؤنڈ دا ورلڈ جاتی ہے۔ آپ اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے ہمیں موقع دے سکتے ہیں۔ بے شمار لوگ کینیڈا میں تشریف لاتے ہیں جب آپ آتے ہیں یہاں پہ، تو اگر آپ ایک پراپر انسٹیٹیوشن سے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی انشورنس میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یعنی جو ایم ٹی او اپروو ڈرائیونگ سکولز ہیں، اگر آپ وہاں سے جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی انشورنس پہ باقاعدہ وہ آپ کو قاعدے قانون کے مطابق سکھاتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے ایم ٹی او اپروڈ انسٹرکٹر ہیں، ارلی روڈ ٹیسٹ اور ہی گارنٹیز، اینڈ آئی نو ہم پرسنلی۔ دس از ناٹ ایڈ فار دا سیک آف ایڈ، میرے اور مظفر کے یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اینڈ آئی نو ہم جب یہ میرا خیال اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ تھے۔ حافظ طارق ڈرائیونگ اسکول ان کا، اور 6477665398 ایریا کوڈ آپ 6477665398 اگر آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں، انشورنس کا ڈسکاؤنٹ ہے، ہائی پاس ریٹس ہیں، اس کے علاوہ 7 ڈیز میں آپ جی یا جی ٹو لائسنس لے سکتے ہیں۔ 6477665398 ان کا نمبر ہے۔ حافظ طارق میرے ساتھ جناب فیاض ویلانا صاحب ہیں، اور فیاض ویلانا صاحب ہم پاکستان کی صورتحال کو ہی ڈسکس کریں گے۔ ویلانا صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔
سر بہت شکریہ۔ اور پاکستان کی بدلتی صورتحال، ایک نیا اتحاد سامنے آیا۔ میں جناب، میں بلکہ کوشش کر رہی تھی کہ میری جناب الطاف حسین صاحب سے بات بھی ہو جائے۔ الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے ذاتی طور پہ کہا کہ میرا بھی یہی قصور تھا، ایگزیکٹلی واٹ عمران خان ڈیڈ، کہ آئی ایکسپوزڈ دوز۔ حالانکہ جناب الطاف حسین کو ہمیشہ انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ الحاق کیا ایم کیو ایم نے، مگر کبھی وہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ عمران خان کو تو لیڈنگ پوزیشن بھی ملی تھی، مگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے ایگزیکٹلی وہی غلطی کی یا وہی کیا کہ ایکسپوزڈ دوز جو حکومت کرنے نہیں دیتے۔ مگر اب کچھ دن پہلے تک وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے اور ان کے بارے میں سب کچھ کہہ رہے تھے، مگر آج کا جو الحاق سامنے آیا ہے، اس میں اگین بڑے بوڑھوں کے کہے کے مطابق ایم کیو ایم بھی شامل ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون نے اب ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، باپ پارٹی بھی شامل ہو گیا ہے، کیونکہ جو پروٹوکالز نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے، میاں صاحب کو مل رہا ہے، اس پہ لگتا یہ ہے کہ ہی از ایون ناؤ ہی از دی ایکچوئل پرائم منسٹر سٹنگ بیہائنڈ دا کار سیٹ، نظر آپ کو کوئی اور آ رہا ہے، مگر بنیادی طور پہ میاں صاحب ہیں جو ان کو پروٹوکالز مل رہے ہیں۔ جس طرح سے پولیس کی نفری ان کے ساتھ ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور یہ نیا جو الحاق ہے ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے ساتھ، ابھی پی ڈی ایم بنی تھی، اب یہ الحاق بن گیا، تو واٹ از دی نیکسٹ؟
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہم ایک جنریشنل شفٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا کسی کو احساس نہیں ہے، اور یہ احساس میرے خیال میں صرف عمران خان کو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان وہ سیاستدان ہے پاکستان میں جس نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تھا، اور اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، और लोगों को उनको एहसास नहीं था, इमरान खान को पहले पता चल गया था कि फ्यूचर सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इस वक्त जो है सोशल मीडिया इनके लिए वही सोशल मीडिया जिस पे वो इमरान का मजाक उड़ाते थे, अब सोशल मीडिया इनके लिए अजाब बन चुका है। आप देखें, चार दिन पहले मैं आमिर साहब को कहूंगा कि वो दिखाएं PMLN डिजिटल, एक अकाउंट है इनका PMLN वालों का, उन्होंने उस पर सर्वे कराया, सर्वे स्टार्ट ही किया उन्हें तो उसके बाद उन्हें वो सर्वे बंद करना पड़ा। उस सर्वे का उन्होंने ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई और साथ लिखा कि मिट्टी का लिखा था, मिट्टी का पता नहीं धरती का बेटा,
मिट्टी का बेटा नवाज शरीफ, या मिट्टी वही बात है पाकिस्तान की, मिट्टी का धरती का बेटा।
वो धरती का बेटा सिर्फ उस वक्त होते हैं जब उन्हें वजारते उज़्मा की कुर्सी नजर आ रही होती है, अदरवाइज वो लंदन की मिट्टी के बेटे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान की मिट्टी के बेटे बने हुए हैं और उस वक्त तक हैं जब तक उन्हें ये उम्मीद नजर आ रही है। अगर आज उन्हें पता चल जाए कि GHQ से उनके मामलात खराब हो गए हैं और GHQ के मामलात उनके अलावा किसी और के साथ ठीक होने लगे हैं, तो वो अपनी मिट्टी को वापस सुधार जाएंगे। वो मिट्टी जो एवन फील्ड वाली मिट्टी है और वही मिट्टी जो है उनको सूट करती है, क्योंकि जहां बच्चे होते हैं बंदे के, औलाद होती है, अपनी अगली जनरेशन होती है, अल्टीमेटली बंदे की इंटरेस्ट वहां ही होती है। तो ये मिट्टी के बेटे का सर्वे उन्होंने लगाया और विद इन अ फ्यू आवर्स उसमें तकरीबन 14,000 लोगों ने सर्वे में उसे हिस्सा लिया और उसमें 25% लोगों ने कहा हम नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, 72% ने कहा कि PTI को वोट देंगे, हम PTI को वोट देना चाहते हैं। और ये PMLN डिजिटल अकाउंट है, ये उनका अपना अकाउंट है जिसके सारे फॉलोअर ही उनके अपने हैं मुस्लिम लीग नून के, उसमें भी अगर 25% वर्सेज 72% अगर रिजल्ट आ रहा है और फिर विद इन फ्यू आवर्स उन्हें ये डिलीट करना पड़ा अपना ये ट्वीट, ये सर्वे डिलीट करना पड़ा। हालात तो ये हैं इनके, उसकी वजह ये है कि अब ये सारे तजर्बे कर रहे हैं। आपको याद होगा लाहौर मीनार पाकिस्तान का इन्होंने जलसा किया तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे और इस तरह लोगों की हाजिरी व्हाट्सएप पे लगेगी, सोशल मीडिया पे लगेगी, और जलसे जितने करते हैं उसकी मरियम ने कहा हुआ है कि कोई कारण मीटिंग करें, जलसा करें, उसकी तस्वीर मुझे फौरन अपलोड की जाए। अपना सारा ये उस सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि सोशल मीडिया जिस यूथ के हाथ में है वो यूथ इमरान खान के हाथ में जा चुकी है और बहुत अरसा पहले जा चुकी है। अब इमरान खान पिछले 5-6 महीने से बिहाइंड द बार है, जेल में है, लेकिन जेल में जाने से पहले आपको याद होगा जब उसे हुकूमत से निकाला गया था तो विद इन 2 मंथ्स आई थिंक उसने 60-80 जलसे किए थे पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, और लोग कहते थे ये पागल हो गया है, ये अपने वर्कर्स को थका थका के मारेगा, ये क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त शायद हम सबको लग रहा था गलत कर रहा है, लेकिन उसे भी नहीं पता था, अल्लाह ताला को पता था कि ये क्या होना है, उसका फायदा क्या होना है उसे। उसका फायदा ये होना है उसे हुआ था कि उसे वो सारा सबक अजबर हो गया जो वो सबक लोगों को बताना चाहता था, जो जो उसने उन तकारीर की थी उसने और जो जो जलसे किए थे और उसमें जो जो कहा था कि ये सारे एक हैं पीछे से, अंदर से ये सारे एक हैं और ये सारे चोर हैं, ये सारे लुटेरे हैं, ये सारे डाकू हैं। ये डाकू वो होते हैं जो आपके हलके में आते हैं, आपके एरिया में आते हैं, चाहे आपके घर आए, आपके बिजनेस पे आए, आपके इलाके में आए, तो जो उनके हाथ लगता है वो लूट के वापस वो अपनी उसमें ग्रोव में अपनी उसमें चले जाते हैं, अपनी गार में। इनकी गार किसी की एवन फील्ड में है, किसी की न्यूयॉर्क में है, किसी की दुबई के विलाज में है, ये लूटने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। वही इमरान खान की बताई हुई बातें आज सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं। अभी जो इतिहाद बना है कराची में MQM का और मियां नवाज शरीफ साहब का, बेसिकली तो ये बहुत पुराने इतिहादी हैं, क्योंकि MQM का जिस तरह इल्जाम लगता है कि MQM बनाई जनरल जियाउल हक साहब ने थी, और सिंध में जमात इस्लामी का, JUP नूरानी ग्रुप का और पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए वहां कराची में ये बनाई गई थी MQM, जियाउल हक साहब ने बनाई थी, और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून जो है, नवाज शरीफ के हाथ जो उनके सर पे हाथ रखा था जनरल जिलानी के थ्रू, वो भी जनरल जियाउल हक साहब थे। और फिर जियाउल हक साहब की जब इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की मुखबरी की थी जनेवा से, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो को फर्क किया और जियाउल हक को बिल्कुल गले इसको नवाज शरीफ को गले लगा लिया, और बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूँ मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। पता नहीं वो दुआ कबूल हो गई, जियाउल हक साहब जल्दी चले गए और उनकी जिंदगी मियाँ साहब को लग गई। तो और उसके बाद आप देखें जियाउल हक का जितना सारा वो उसका सियासी उनकी विरासत थी वो उनके बेटों इजाज़ुल हक और अनवारुल हक के हाथ में जाने की बजाय मियां नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ के हाथ में लग गई। तो बेसिकली तो ये जियाउल हक की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ शक्लों में घूम फिर के फिर इकट्ठी हो जाती हैं, फिर मिल जाते हैं। अब जो 4-6 महीने पहले कराची के लोगों को ये बात अजबर है कि पिछले 16 महीने में जितनी महंगाई आई है, 16 महीने प्लस 5 महीने अनवारुल हक काकड़ साहब के भी 3 महीने, ये जितना टाइम था इमरान खान के जाने के बाद का, इसके दौरान जितना महंगाई का तूफान आया है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। अगर MQM इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में
किसी पिंडी बॉयज के इशारे पे इमरान खान के खिलाफ जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ एंड पीडीएम का साथ ना देती तो कभी इमरान खान की हुकूमत ना जाती, और अगर एमक्यूएम ना जाती तो बाप ने भी नहीं जाना था, क्योंकि एमक्यूएम के साथ वोट थे, बाप के 5 वोट थे, और एमक्यूएम के साथ वोट भी इमरान खान के साथ खड़े रहते तो शहबाज शरीफ तो सिर्फ 2 वोटों से वजीर आजम बना था। तो लोग समझते हैं पाकिस्तान भर के कि ये एमक्यूएम उस महंगाई की जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है उसकी भी सबसे बड़ी मुजरम एमक्यूएम है। एमक्यूएम पता नहीं किस मुंह से पब्लिक के पास जाएगी, और शायद इस वक्त वो डूबते को तिनके का सहारा, कराची में उन्होंने भी अपने सर्विस करा के देख लिए, कराची में एमक्यूएम की अब वो बात नहीं बनती। और आपने देखा कि अब लंदन में बैठा हुआ वो शख्स जिसका मैं नाम अभी तक नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि मुझे मेरी रियासत ने, मुझे रियासत पाकिस्तान ने बताया था कि इस बंदे ने 22 अगस्त 2017 को मेरी माँ को, अपनी माँ को, हमारी धरती माँ पाकिस्तान को गाली दी थी। जब तक रियासत पाकिस्तान उसे क्लियर नहीं करती मैं तो उसका नाम अपनी जबान पे नहीं लेता। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि एमक्यूएम लंदन का जो बैठा हुआ सरबराह है वो वहां से उसके 2-2, 2.5-2.5 घंटे के इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं, और वो इमरान खान को बैक कर रहा है, और वो कह रहा है कि इमरान खान जो बात कर रहा है सही कर रहा है। उसको इस बात का अंदाजा भी है कि पब्लिक इमरान खान के साथ है, मैं इमरान के साथ जुड़ूंगा तो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, एक इस बात का उसे अंदाजा है। दूसरा उसे शायद लगता है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट या सिविल सुप्रीमेसी की जंग थी वो मंजूर पश्तीन भी नहीं जीत सका, नवाज शरीफ भी नहीं जीत सका, उससे पहले बेनजीर भुट्टो भी नहीं जीत सकी, लेकिन शायद अब इमरान खान ने जिस तरह सिविल सुप्रीमेसी की जंग में जिस तरह डंट डाला है एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में, अब शायद लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां से अपना कोई आइंदा का लाहे अमल तय करना पड़ेगा, और उन्हें सिविल सिविलियन के साथ बैठ के कोई टर्म्स एंड कंडीशन तय करना पड़ेंगी। इसलिए लंदन में बैठे हुए शख्स को, एमक्यूएम के उस बानी लीडर को, यह लगता है कि इमरान खान को मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कराची में मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ मिल जाए, एमक्यूएम भी मिल जाए, और कोई पाक सरजमीन पार्टी और पाक जो भी इस तरह की जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं सारी मिल जाएं, इसके बावजूद कराची इमरान खान के हाथ से वो नहीं ले सकते, स्पेशली उन हालात में जब लंदन में बैठा हुआ एमक्यूएम लंदन का सरबराह इमरान खान के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए ये कोई इतिहाद नहीं है। अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब आप देखें, पाकिस्तान पहुंचे, उन्हें रेड कार्पेट उनका रिसीविंग हुई, उनको हर किस्म की गारंटियां हुई, सारा कुछ हुआ। उनकी कैबिनेट इस वक्त जो केयर टेकर कैबिनेट है अनवारुल्लाह काकड़ साहब वाली, कैबिनेट सारी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी की बनी हुई है। इस वक्त आप एक और चीज पे गौर नहीं लोग करते, हमारे रिपोर्टर्स के पास शायद टाइम नहीं है या उनका इतना वो सोच नहीं है, उस तरफ ख्याल नहीं जाता उनका। आप ग्वादर से लेकर गिलगित तक और कश्मीर से लेकर कराची तक आप तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब के चहेते ब्यूरोक्रेट लगे हुए हैं। कोई बंदा इस बात पे गौर नहीं करता कि ये क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। हर बंदा उनकी मर्जी का लग रहा है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो SSP है, चाहे DIG है, चाहे IG है, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह है या कोई और कोई इंतजामी अहदे पे है, सारे मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी के लगाए हुए थे पहले, या उन्हें कंटिन्यू कराया गया या अब लगाए जा रहे हैं। जरा सा भी कोई बंदा गड़बड़ करता है तो उसको हटा दिया जाता है, और अगले दिन फिर लाहौर जाती उम्रा से जो ऑर्डर आता है उस बंदे को तैनात कर दिया जाता है। सारी कोशिशें करने के बावजूद अभी भी इस वक्त भी अवाम में जो पॉपुलैरिटी है वो वही है जो PMLN डिजिटल के अपने अकाउंट से खुद सर्वे करा के मियां नवाज शरीफ साहब ने देख लिया है। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होना, और लोगों को ये बात नहीं भूली कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वही हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि लोग बाहर जाके किताबें लिखते हैं एग्जाइल में जब जाते हैं, ये मियां नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये बाहर जाके बाल लगवा रहे हैं, ये कैसे लीडर हैं। अब ये बाल लगवाने और किताबें लिखने वाली बात क्या कराची के लोगों को भूल गई है, और क्या कराची के लोगों ने अपने बलदियाती इंतखाबात जो पीछे हुए थे उसमें अपना फैसला सुना नहीं दिया था? कराची में वहां जमात इस्लामी और PTI ने बलदियाती इंतखाब जीता था, धांधली करके पीपल्स पार्टी ने अपना वहां बना लिया, मेयर बना लिया। अदरवाइज कराची अब भी आज भी PTI के हाथ में है, और PTI के साथ जो भी उसका इतिहादी होगा, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MQM लंदन वाला हो, चाहे कोई और XYZ हो, इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। और ये जो GDA को साथ शामिल कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि पीर पगाड़ा साहब ठीक है वो मशहूर हैं कि वो अपने हमारे GHQ के बंदे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन GDA ने जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो GDA असेंबली से बाहर नहीं निकली थी लेकिन अपोजिशन में बैठी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ का साथ नहीं दिया था। और आपको याद होगा कि GDA की उस वक्त जो पार्लिमानी लीडर थी डॉक्टर फहमीदा जुल्फकार मिर्जा, उनकी पहली स्पीच इमरान खान के हक में थी और PDM के खिलाफ थी। उसके बाद फहमीदा मिर्जा तो उनके हेल्थ के इश्यूज थे या जो भी मसला था, सायरा बानो जो GDA की MNA थी उन्होंने भरपूर वहां अपोजिशन का किरदार अदा किया। और आज लगता है ऐसा है कि शायद सायरा बानो जैसे कुछ करेक्टर, अगर उन्हें लगा कि GDA आज फिर अपने रास्ते से हट के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इताद कर रही है और MQM के साथ इताद कर रही है, तो शायद सायरा बानो जैसे कुछ लोगों को GDA छोड़ के PTI ज्वाइन करना पड़े।
بہت شکریہ. اور سامعین اکرام, ظاہر ان دنوں میں نومبر دسمبر جنوری از دا موسٹ ٹفسٹ پیریڈ آن ارتھ. اگر کہیں اسٹیٹک سنائی دیتا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے 6478724900 نمبر ڈائل کر کے آپ اپنے فون لوکل کال پہ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں, اپنی کی گاڑیوں میں بلو ٹوتھ پہ یا ہماری ویب سائٹ eawaz.com. ابھی سر آپ نے بڑی مزے کی بات کی, یقیناً اتحاد کے بارے میں ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ اتحاد ہو رہا ہے, اور لندن میں بیٹھ کے جناب الطاف حسین صاحب تو عمران خان کی بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے سیاست میں, کیونکہ ہمیشہ کی دشمنی نہیں ہوتی, چاہے وہ پرویز مشرف کی حکومت سے لے کے چاہے نواز شریف پیپلز پارٹی, ہر حکومت کے ساتھ وہ الحاق کرتے ہوئے آئے ہیں, وہ پچھلی رنجشوں کو اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے نہیں رکھتے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم ان کراچی ہے پاکستان میں, آر دے ناٹ لسننگ ٹو جناب الطاف حسین؟ بیکاز الطاف حسین کا سٹانس از ایبسولوٹلی ڈیفرنٹ فرام دی ایم کیو ایم ان کراچی.
انہوں نے آفیشلی ایم کیو ایم لندن سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا تھا, اس لیے انہیں سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ملی تھی, اور انہوں نے اپنا نام ایم کیو ایم پاکستان رکھا تھا, اس لیے ان کا آفیشلی ایم کیو ایم لندن سے کوئی لینا دینا نہیں. پبلک کتنی سنتی ہے ایم کیو ایم لندن کی, دس از اے ڈفرنٹ اسٹوری, لیکن آن گراؤنڈ ایم کیو ایم پاکستان ہی ہے. ایم کیو ایم لندن پاکستان میں کچھ نہیں کر رہی اس وقت, نہ کر سکتی ہے, کیونکہ آفیشلی دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس ان پاکستان. لندن سے بیٹھ کے آپ سوشل میڈیا پہ جو مرضیاں کرتے رہیں, اور پبلک میں کتنی آپ کی پاپولرٹی ہے وہ تو آگے چل کے پتا چلے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پبلک اس کو سننا شروع ہو گیا جس کو پہلے نہیں سن رہی تھی, کیونکہ میری ریاست پاکستان نے کہا تھا کہ اس کو نہیں سننا. اس نے پاکستان کو 22 اگست 2017 کو پاکستان کو گالی دیا, اس لیے اسے نہیں سننا, اس کی آواز بند کر دی تھی, اس کا نام لینا منع کر دیا تھا. اور میرے جیسے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریاست پاکستان کی بات ماننی ہے, وہ بات ماننی ہے جو جائز ہے, جو ناجائز ہوگی ہم نہیں مانیں گے. ہاں, اگر ریاست پاکستان کہتی ہے کہ اس نے پاکستان کو گالی دیا ہے, میں مانتا ہوں, میں اس کا نام نہیں لوں گا, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, میں اسے پروموٹ نہیں کروں گا, لیکن اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات پاکستان کے عوام تک پہنچاتی ہے اور پاکستان کے عوام سن رہی ہے, سوشل میڈیا پہ ویوز نظر آ جاتے ہیں, کامنٹس نظر آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. ابھی وجاہت سعید خان نے ایک ان کا انٹرویو کیا ہے 2 ہفتے پہلے, لوگوں نے بھرپور اسے جو ہے اس کا فیڈ بیک اسے ملا, اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات اب دوبارہ سننی جا رہی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک عام معافی کا اعلان کیا جائے, عمران خان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا جائے, میرے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا جائے, اور باقی بھی کوئی لوگ ہیں, منظور پشتین یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں, جس کو بھی ریاست کو جس سے ناراضگی ہے, سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے. اسے یہ ایک راستہ نظر آ رہا ہے, اس لیے وہ ادھر چل پڑا ہے. ادروائز ہمارے ملک میں ہوتا یہ رہا ہے, یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہماری ایک جنریشنل شفٹ ہے, جنریشنل شفٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ایک نازک موڑ پہ کہتے تھے, اس وقت واقعی ہم ایک اہم موڑ پہ ہیں. اب اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا وہ پرانا سیاسی سوداگروں والی سیاست کرنی ہے یا کوئی نظریے کی سیاست کرنی ہے. عمران خان کا ورسز ریسٹ آف آل آف آر پالیٹیشینس فرق یہ ہے کہ یہ سارے سیاسی سوداگر ہیں, اور عمران خان نظریے کا ایک خواب لے کے چلنے والا بندہ ہے, ایک ایسا خواب جس میں سامنے دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے, پھر بھی خواب دیکھنے والا کہتا ہے نہیں, میں اس دیوار سے ٹکراؤں گا, یا دیوار ٹوٹے گی, یا میں اس دیوار سے اوپر سے جمپ کر کے دوسری طرف جاؤں گا اور دوسری طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی. یہ خواب دیکھنے والا بندہ ہے, ورنہ اس کو کس بندے نے مشورہ نہیں دیا کہ خدا کے بندے یہاں ٹکرے نہ مار ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, آپ آرام سے جو تمہیں کہتے ہیں ایگزائل میں چلے جاؤ, باہر جا کے کتابیں لکھو, اپنے سیمینار اٹینڈ کرو, کانفرنسیں اٹینڈ کرو, باہر سے اپنی پارٹی چلاؤ, اور پھر ایک خمینی بن کے واپس پاکستان میں 2-4-5 سال بعد واپس آؤ. اس کو یہ سارے سبز باغ دکھائے گئے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے نہیں, اگر میں یہاں سے واپس باہر چلا گیا اس کا مطلب ہے میں گراؤنڈ چھوڑ کے چلا گیا ہوں, میں نے گراؤنڈ نہیں چھوڑنا. اور ابھی تک اگر پاکستان کے عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, وہ بھاگا نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. ہمارے پاکستان بھر کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو بندہ کھڑا رہے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے اب تک جتنے سرویز, میاں نواز شریف صاحب نے گیلپ سروے آف پاکستان سے بھی سروے کرا کے دیکھ لیا, اپنے مرضی کی کمپنیوں سے, اپنی کمپنیاں کھڑی کر کے ان سے بھی سروے کرا لیا, اپنے لوگوں کے جتنے ان کے ٹکٹ کے امیدوار تھے ایم این اے ایم پی اے کے ان سے بھی سروے کرا کے دیکھ لیے, خاموش سروے بھی کرا لیے, اعلانیہ سروے بھی کرا لیے, کہیں سے انہیں یہ نہیں لگ رہا کہ لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مینار پاکستان کے ایک جلسے کے بعد ابھی تک میاں نواز شریف صاحب پبلک کو فیس کرنے کے لیے کہیں نہیں گئے. ہاں, ڈرائنگ روم میں میٹنگ ٹو میٹنگ کھیل رہے ہیں, اور شاید اب وہ رہ ہی ڈرائنگ روم میں میٹنگ ٹو میٹنگ کے لیے رہ گئے ہیں. جہاں تک بات ہے عمران خان کے خواب کی بات, عمران کا خواب تھا تبدیلی کا خواب تھا, لیکن تبدیلی کے اس خواب کے سفر کے دوران اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی سول سپریمیسی والوں سے. وہ جو ہماری سول بالادستی والی جنگ تھی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی, उससे पहले उसे लगता था कि हम एक पेज पे हैं और उसने ऐलानिया कहा कि हम एक पेज पे हैं, लेकिन जब सिविल सुप्रीमेसी वाले लोग उसके रास्ते में आए तो इमरान खान ने तब्दीली वाले उसको बैक बर्नर पे कर दिया। नई जंग जो है हकीकी आजादी की जंग उसने शुरू कर दी, और हकीकी आजादी की जंग उसने इतने जोरदार तरीके से लड़ी कि आज वाकई पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझता है कि ये लीडर है और ये जो बात करता है सही करता है। इमरान खान पे किस किस्म का इल्जाम इन्होंने नहीं लगाया उसकी जात पे, हर किस्म के इल्जाम लगाए हैं, इसका निकाह गलत हुआ है, इसका शादी गलत हुई है, इसकी रुख्सती गलत हुई है, इसकी तलाक गलत हुई है, इसका तोशाखाना गलत हुआ है, इसका फलां चीज गलत हुआ है।
अब फैजाबाद का धरना, अब फैजाबाद का धरना खोल के बैठ गए हैं बड़े मुर्दों के लिए
सब कुछ। लेकिन मसला यह है कि जब इमरान खान ने सारे इसके दौरान अनफोल्ड करना शुरू किया है तो इमरान खान को पता यह चला है ये जो सिविल सुप्रीमेसी वाला मामला है, असल तो बात यह है कि ये सिविल सुप्रीमेसी तो एक बहाना है, एक स्लोगन है, असल में तो ये गठजोड़ है करप्ट लोगों का। और उसमें आपने देखा कि एक्सपोज हुए हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई है। कमर जावेद बाजवा साहब को जब इमरान खान ने कहा कि मैंने अलीम खान को नहीं बनाना चीफ मिनिस्टर क्योंकि उस पर इल्जाम है करप्शन के, तो बाजवा साहब ने कहा यह तो कोई मसला नहीं है, यहां तो हर बंदे पे होता है, और इसलिए वो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जितने ये लोग हैं सिविल सुप्रीमेसी की जेली जंग लड़ने वाले, ये उनके साथ मिले हुए हैं, और वो जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग इनके खिलाफ लड़ने वाले हैं वो भी बेसिकली करप्ट लोगों को प्रमोट करने वाले हैं। आपने देखा इस सारी जंग के दौरान सहाफी पर हमारे एक्सपोज हुए, पता चल गया कि कौन कौन सा सहाफी कहाँ का रातब हो रहा है, किस दस्तरखान से रात को दिन को रात दिन वो खाते हैं और आगे चलते हैं। इसी तरह ये जो नारा लगाते हैं ना कि खाता है तो लगाता भी है, मेरे ख्याल में ये नारा करेक्ट कर लेना चाहिए, वो नारा उनका ये होना चाहिए कि खाता है तो खिलाता भी है। इसने सहाफियों को खिलाया, इसने ब्यूरोक्रेट्स को खिलाया, इसने हमारे जजेस को खिलाया, इसने हमारे जर्नैलों को खिलाया, और ये सिलसिला ता अभी तक आज तक ये जारी है। अब भी इस वक्त भी कौन सी हमारी अदालत है जिसपे हम उंगली नहीं उठा सकते, कौन सी ऐसी अदालत है जिसपे उंगली नहीं उठाई गई, कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है, कौन सा ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कौन सा ऐसा चेयरमैन नैब है, हमारा कोई इदारा कोई बंदा बचा हुआ ही नहीं, हर बंदा करप्ट हो गया। ये पिछले 35 साल की हमारी कार्रवाई है। इसलिए इमरान खान की जो लड़ाई थी वो बेसिकली एक एक किरदार सारे एक्सपोज हो रहे हैं, ये एक नहीं 10 मीटिंग्स कर लें, एक नहीं 10 इत्तेहाद बना लें,
बड़ा
कितना होगा, 13-14 पार्टियां उसमें थी, इसमें अब और कितनी और इन्होंने शामिल करनी है।
कोई बात नहीं, अब नया इत्तेहाद के लिए तैयार रहिएगा फयाज मीना साहब। आई एम सो सॉरी, हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से हम इसी तरह से कवर कर सकते हैं, इंशाल्लाह थर्सडे को फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। सर आपका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फयाज विराना साहब से आई एम सो सॉरी, दैट्स दिस इज ऑल व्हाट टाइम वी हैव, मगर न्यूज के लिए आपको लेके आएंगी शाजिया साहिबा। अगर आपको रियल स्टेट के हवाले से घर खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस वक्त देर आर सम गुड डील्स, डू नॉट इन्वेस्ट समथिंग, फाइंड गुड डील्स। रियल स्टेट के हवाले से मैं आरिफा मुजफ्फर सिटीस्केप के साथ, मेरा नंबर 6478986245। अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं तो आप अपना किचन कैसे रिन्यू कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं, आई कैन गेट यू गुड डील्स, गिव मी अ कॉल, माई नंबर 6478986245। अगर कहीं आपको स्टैटिक मिलता है तो यू जस्ट डायल 6478724900 एंड कीप ऑन लिस्निंग, वी आर ऑन टिल 5:30.
नान कबाब, मॉडर्न अफगानी किचन, लजीज अफगानी ग्रिल कबाब, चपली कबाब, चौपान कबाब, लैम्ब शैंक, चिकन कोरमा प्लेट, फैमिली प्लेटर, कबाब रैप, फ्राइज, मंटू, बोलानी, फिरनी और सबके लिए बहुत से मजेदार खाने। अब आपके शहर मिसिसागा में एक और नई लोकेशन के साथ 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट F3, मिसिसागा। For orders and reservations, visit nankebab.ca.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं,
और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
हाँ, दिखा ना क्या क्या बातें कर रही है पीछे, पहले माइक खोल दिया इनका। कल में ना मैंने क्या करना है, आप कल जरूर देखिएगा। मैंने जैसे ही अंदर आती ना, तो अंदर आने के बाद जो इनकी बातचीत होती है ना, जिस स्टाइल में होती है, ये तो अभी हंसते मुस्कुराते बातें कर रही है ना अभी आप, ये सारा फेक है, एवरीथिंग इज फेक। ओके, वो जो बातें असल की बातें है ना, कल मैंने माइक ऑन कर देता इनका और इनको बताना नहीं है, तो वो सारी चीजें ये सारी चीजें है ना, वो कल आप सुनेंगे आराम से, जरूर, नो एक्स्ट्रा चार्ज। ये दिस इज कॉल्ड ब्लूपर्स, आई एम गोना शो यू लाइव ब्लूपर्स। चलिए साहब, अब ले चलता हूं आपको मैं कहां पर, कुछ न्यूज में भी आपके लिए पेश करते हैं आपकी तरफ से, जल्दी से मैं बता दूं आपको, और वो भी है डेंटिस्ट हमारे और आपके अपने डॉक्टर मुजीब काजी, दो लोकेशन सर्व करते हैं, विलियम्स पार्क पे एंड क्राइसलर पे एक है, 39 क्वीन स्ट्रीट पे दूसरी है। दांतों में कोई खराबी हो तो डॉक्टर मुजीब काजी, 9054578661। इसके साथ साथ डॉक्टर पद्माजा रानी अगर ईस्ट एंड में आप हैं तो 3410 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर, डेंटिस्ट डॉक्टर पद्माजा, 4162997466। और इसके साथ साथ हेयर मैक्स के जनाब शिराज कहते हैं, आपके दांत दांतों में नहीं कानों में अगर खराबी हुई है या सुनने में कभी आ रही हो तो भाई आप हेयर मैक्स पे जाइए, आपका साजो आवाज का हवाला देने पर आपका जो हेयरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। हेयर मैक्स के शिराज रहीम का फोन नंबर है 4167928792। अब लिए चलता हूं मैं आपको कहां पर, हाँ वहीं पर जहां पर मैं इनका जिक्र कर रहा था ना, वो उसी शख्सियत मिलाने के लिए। कल आप देखिएगा माइक ऑन होंगे और ये जो बातें कर रही होंगी आप राइट हुए, अभी हंसती मुस्कुराती डॉली डॉली डॉली, कौन, शाजिया मलिक जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी आप?
वालेकुम सलाम। अच्छा वैसे जो ब्लू पर्स है ना, वो तो आज वैसे आप बने हुए हैं। इतना कोई प्यारा आपने कार्डिगन लगाया हुआ है, हैं जी, उसके नीचे जो शर्ट है उसका इतना
मैं
गुड किस्म का वो सेल्फ प्रिंट है।
ये देखें, मैं आपसे मुकाबला करना चाह रहा था।
अच्छा,
और मैं आज मैंने कहा कि यार ये देखिए, ये तो लेटेस्ट है एकदम,
ब्रांड न्यू,
ब्रांड और ब्रांडेड, ब्रांड न्यू
ओरिजिनल।
मैं पहन के आया आपके ऑफिस में, आया सुबह सलाम करने के लिए आपको, तो पता लगा कि वो तो आपने तो ऐसा पहना हुआ है कि मैं तो छड़ पर
कटके सुटो
बार सुटो पार मार सुटो मैं नहीं चाहिए।
अच्छा,
मतलब आपके पास और भी ज्यादा कुछ हीरे वीरे थे जो इतने काफी थे?
नहीं नहीं, ये इंतहाई फेक किस्म के हैं और है भी इंतहाई बकवास किस्म के।
आप ये हमेशा कहती हैं ताकि आपको कोई रॉब ना करे।
अच्छा,
सुन लो रॉबर्स, ये सारे असली है, पढ़ लो नू, पढ़ लो। मैं एड्रेस पे बता देता हूँ आपको, कम टू मी।
अच्छा अच्छा जी, अच्छा जनाब, ये जो है ना माजिद भाई, इन्होंने तो मस्करियां करते रहना, इनका तो दिल करता ही नहीं है कि मैं कोई काम करूं, ना ये करना चाहते हैं ना ये चाहते हैं कि मैं जो है वो काम करूं। ठीक है जी, लेकिन हमने तो करना है। अच्छा जनाब, हम आपको बताते हैं कि दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय इकरास, तो ikraas.com पे आप जाएं अगर आपको शरिया कंप्लायंस सर्विसेज चाहिए। इसके अलावा सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरिफा मुजफ्फर जी, अगर आपको घर बेचना या खरीदना है तो आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। इनका नंबर है 6478986245, और अगर आपको टैटिक मिल जाता है। तो 6478724900 पे आप सुने और बिल्कुल क्लियर किस्म की आपको आवाज आएगी। अच्छा जी, आज हमारी जो फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलनी जोली साहिबा, उन्होंने आज बड़ी खुशखबरी दे दी है। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं हमारे जो पीआरस भी हैं, कैनेडियन नेशनल हैं, उनकी फैमिलीज हैं सब, बिल्कुल वो जो यहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है गाजा, तो हम अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं और इजिप्शियन साइड जो है वहां पे आते जा रहे हैं। इसकी पुष्टि जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर अहमद हुसैन ने भी की। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वहां से इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, कैनेडियंस को कायरो में बुलाया जा रहा है और कायरो में कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उनको अकोमोडेशन, फूड, बेसिक नेसेसिटीज जो है वो दे रही है। आज पियर पॉलिवर साहब जो है उन्होंने नॉन बाइंडिंग एक मोशन लेकर आए थे जिसमें कि उन्होंने ट्रूडो साहब को कहा था कि आप एक्सटेंड करें अपना ये जो कार्बन टैक्स पॉज है ऑन होम हीटिंग ऑयल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ होम हीटिंग्स, तो उसके वो फेल हो गया। हालांकि जो आपको पता ही है कि जो एनडीपी है वो वैसे लिबरल पार्टी के साथ खड़ा होता है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने लेके आए थे ये सारी जो डिटेल्स लिबरल गवर्नमेंट, तो इसके साथ हम ज्यादा सहमति हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये इसलिए पास हो गई क्योंकि जो ब्लॉक क्यूबेकवा और ग्रीन एमपीज जो हैं वो खड़े रहे लिबरल्स के साथ और उन्होंने डिफीट किया ये कंजर्वेटिव प्रपोजल जो था। और इसमें कहा गया था कि भाई क्यूबेक तो इसके अंदर इंपैक्टेड नहीं है इसलिए क्योंकि फेडरल कार्बन टैक्स जो है यहां पे इन इफेक्ट भी नहीं है। जाहिर है कि पियर पॉलिवर साहब ने इसके ऊपर बड़ा खफकी का इजहार किया है। ये जो कार्बन टैक्स जिसको के ट्रूडो साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम इसको पॉज करेंगे, तो ये जिन इलाकों के अंदर अप्लाइड है वो है अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ऑन्टेरियो, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, पीआई, यूकॉन और नुनावट, तो इससे लोगों को जाहिर है कि काफी मिलेगी। लेकिन आज बड़ी हैरत हुई कि जो है एनडीपी जगमीत सिंह ने कहा कि ये जो मैं तो नहीं चाहता था लेकिन मेरी जो पार्टी थी उसने यह बोला था और इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये जो लिबरल पार्टी की बड़ी रिडिकुलस अप्रोच है कार्बन टैक्स के ऊपर, तो ये आज लोगों को थोड़ी सी हैरत हुई। स्टैट्स कनाडा के मुताबिक जी वन इन थ्री कैनेडियंस जो हैं वो डेंटिस्ट जो हैं उनको उन्होंने नहीं जाके विजिट किया है लास्ट ईयर में, और ये वो कहते हैं जी कि बेस्ड ऑन 2022 कैनेडियन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज डेटा, नहीं वन थर्ड कैनेडियंस, नॉट वन इन थ्री कैनेडियंस, वन थर्ड कैनेडियंस जो है वो डेंटिस्ट के पास नहीं गए थे। वो कहते हैं जी 35% जो है उनके पास तो डेंटल इंश्योरेंस ही नहीं है और दूसरे 40% जो है इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा जी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है और इसलिए हम डेंटल केयर की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। आपको पता ही है कि एनडीपी ने लिबरल गवर्नमेंट को कहा था कि हम आपके साथ उसी वक्त खड़े रहेंगे जब आप डेंटल इंश्योरेंस जो है वो लोगों को देंगे। 9 मिलियन लोग जो हैं इनको अब ये जो नेशनल डेंटल इंश्योरेंस है ये कवर करेगी और ये तमाम फैमिलीज इनकी जो एनुअल इनकम है वो 90,000 से कम है, उसके लिए लिबरल गवर्नमेंट ने 13 बिलियन डॉलर जो थे वो भी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स साइड पे रखे थे और ये कवरेज जो है ये अभी साल के आखिर से लोगों को मिलनी हो जाएगी। 55% जो है उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो प्राइवेट डेंटल इंश्योरेंस थी जो कि हमको मिली हुई एम्प्लॉयर या यूनिवर्सिटी या किसी और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसमें, उसकी तरफ से 4% ने कहा कि जी हम जो पब्लिक गवर्नमेंट पेड प्लान है उससे हम कवर्ड हैं और 76% ऑफ वो लोग जिनके के पास इंश्योरेंस थी वो तो डेंटिस्ट के पास गए थे पिछले 12 ईयर्स में, लेकिन 51% जिनके के पास कवरेज नहीं थी वो लोग नहीं गए थे डॉक्टर्स के पास। कनाडा की जो पोएट है रूबी और उनको एक जो कमला हैरिस दिवाली की पार्टी कर रही थी उस सिलसिले में व्हाइट हाउस ने उनको उस दिवाली पार्टी में को अटेंड करने के लिए बुलाया लेकिन रूबी कौर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस है उनकी गवर्नमेंट का जो इसराइल और गाजा की वॉर में और जिस तरह से वहां पे एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो ट्रैप सिविलियंस को दी जा रही है जिसमें 10,000 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई है ऑन द हैंड्स ऑफ इसराइल, तो इसलिए जो है मैं इनका ये इनवाइट टर्न डाउन करती हूं और इसराइल जो कॉन्स्टेंटली गाजा की बॉम्बिंग कर रहा है तो मेरा दिल नहीं करता है कि मैं इनका इनवाइट मानूं क्योंकि ये वो रजीम है जो कि इसराइल के साथ खड़ी हुई है जो कि इतना जुल्म कर रही है। तो कूडोज टू यू भाई, वेरी ब्रेव ऑफ यू आई मस्ट से। तो इन्होंने जी टर्न डाउन कर दिया। साढ़े जहाँ कोई पाकिस्तानी कोई और होता तो कहता वो जी व्हाइट हाउस ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है और कमला हैरिस साहिबा का इन्विटेशन है मैं तो जरूर जाऊंगी। कूडोज टू दिस गर्ल, शी सेड नो आई विल नॉट गो, व्हाइट हाउस का है तो क्या है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक हंड्रेड्स ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं वो आज पोर्ट ऑफ टेकोमा के अंदर वाशिंगटन में उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था, और वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत में जो वर्कर्स हैं उनको जाने नहीं देंगे ये सप्लाई वेसल्स की तरफ, ये जो मिलिट्री के हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये लेके जा रहे हैं सारे ये वेपन्स इसराइल को देंगे और ये गाजा के ऊपर जो है इसी तरह इनको चलाएंगे। वो कहते हैं जी कि वी नीड टू स्टॉप दिस मर्डर, और वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि ये यूएस जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, और ये जो कॉन्स्टेंटली इसराइल को फंड कर रही है इसको रोकें। जेफ जुर्गेसन जो कि पेंटागन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अल जजीरा को कहा कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो शिपमेंट थी सारी इसके अंदर सपोर्टिव मूवमेंट ऑफ यूएस मिलिट्री कार्गो था। उन्होंने कहा जी और मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन है था, क्योंकि ये ऑपरेशन सिक्योरिटी की बात होती है तो लोगों को तो पता ही था कि ये सारे वेपन्स हैं इसके अंदर जो जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर लिए रास्ते रोके हुए थे। इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ यूएस ज्यूइश एक्टिविस्ट जो हैं वो आज न्यूयॉर्क स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर चढ़े हुए थे जी, और वो कह रहे थे कि ये दिखाएं जरा आमिर वो तस्वीर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे ये चढ़े हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि फौरन इसराइल को कहा जाए कि ये अपना जीनोसाइड जो है इसको बंद करें, और ये जो कॉन्स्टेंटली गाजा के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं इसको बंद करें। आज ये जो प्रोटेस्टर्स थे ज्यूइश वॉइस फॉर पीस ग्रुप से, उन्होंने कहा जी कि हमारा नाम लेके, ज्यूज का नाम लेके मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने की जरूरत नहीं है, और इन्होंने बड़े बड़े जो बैनर्स पकड़े हुए थे उन्होंने कहा था द होल वर्ल्ड वॉचिंग पैलेस्टीनियंस शुड बी फ्री। इससे पहले भी इन लोगों ने जो है कुछ इसी तरह के ज्यू ग्रुप्स ने मोर्चे निकाले थे, और उन्होंने कहा था कि इन सब लोगों के ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है इसको बंद किया जाए, सीज फायर किया जाए। और इससे पहले लेट अक्टूबर में थाउजेंड्स जो थे ऑफ अमेरिकन, उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था मैनहट्टन के अंदर उसके अंदर भी इसी तरह की डिमांड्स रखी थी कि सीज फायर किया जाए और इसराइल को मना किया जाए। थाउजेंड्स ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स जो थे वो अलॉन्ग विद ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन ब्रुकलिन ब्रिज को भी उन्होंने कुछ दिन पहले रोका था, और उन्होंने कहा था कि इसको रोकें फौरन और सीज फायर की तरफ जाएं। आज के ये जो लोग थे सारे, इन्होंने ब्लैक टी शर्ट्स पहनी हुई थी सब के सब ने, और उनके ऊपर लिखा हुआ था, स्लोगन्स लिखे हुए थे कि ज्यूज डिमांड सीज फायर नाउ, तो सीज फायर नाउ, तो नॉट इन माई नेम, नॉट इन माई नेम ऐसे करके, या नॉट इन आवर नेम करके ऐसे उन्होंने कहा कि हमारा यानी ज्यूज का नाम लेके मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने, पैलेस्टीनियन के ऊपर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और इसके मुताबिक रशिया जो है वो अब ऑफिशियली बाहर आ गया है इंटरनेशनल एक्सक्यूज मी सिक्योरिटी पैक्ट जो है जिसमें कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कन्वेंशनल यूज ऑफ वेपन्स को। रशिया का कहना था कि नेटो जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है और हम उनको मना भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप है इससे हम बाहर आ रहे हैं, क्योंकि नेटो जो है अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है और हमारे दरवाजे के बाहर आ रहा है। रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा जी कि ये ट्रीटी जो है हमारे रशिया के इंटरेस्ट को केटर नहीं करता है, बल्कि हमारे ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और जो सैंक्शंस हैं वो लगाई जा रही हैं। इससे पहले भी पुटिन साहब जो थे उन्होंने रिवोक किया था कि मेरा जो कंट्री है वो रेटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी ट्रस्ट बैन ट्रीटी जो है उसको उसके आगे नहीं जाएगा और उसको नहीं करेगा। वो कहते हैं जी कि ये उस वक्त साइन किया था 1990 में जिस वक्त के बर्लिन वॉल जो थी वो फॉल हुई थी, और इसका मतलब ये था कि कोल्ड वॉर राइवल्स जो हैं वो आगे 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 ना जाए और न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं बल्कि इसको रोकने की बात करें, तो लेकिन ये रुकी नहीं है और इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन यूरोप का कहना है कि ना तो 2007 में ना 2015 में रशिया बिल्कुल मना नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमको जो है ये सब करना पड़ा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि हो सकता है कि हम पूरे के पूरे गाजा को अब कंट्रोल करें, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इनके पीछे जो है जैसे मेरे पीछे मजद भाई खड़े हैं इनके पीछे जो है बर्डन साहब खड़े हैं, तो वो कहते हैं जी कि नहीं, हमास जो है वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज चूंकि बढ़ा रहा है तो इसलिए हमको अब गाजा को कंप्लीटली जो है अंडर हमारी सिक्योरिटी लाना पड़ेगा, और हां हम घंटे घंटे के लिए हम खोल सकते हैं ताकि आप ह्यूमैनिटेरियन अगर आपको कोई एड उनको भेजनी है तो आप भेजें, लेकिन इसके हम जो है वो इनको रोकेंगे नहीं। और इस वक्त की जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि इसराइल के जो टैंक्स हैं वो गाजा के अंदर एंटर हो गए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटरेस उन्होंने भी कहा था कि फौरन सीज फायर किया जाए, क्योंकि ये जो गाजा का एनक्लेव है ये बच्चों का ग्रेव यार्ड बन चुका हुआ है, इसको रोकें। लेकिन नेतन्याहू साहब का कहना है जी मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा।
और इसके साथ ही समय नाजरीन हम आपसे यह चाहेंगे 770 AM रेडियो डायल से, बट हम छोड़ के नहीं जा रहे कहीं, आपको पूरी खबरें आप सुन सकेंगे वेरी इजी नंबर 6478724900 6478724900। बकिया की न्यूज आप सुन सकेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास टेलीफोन है, तो आप eawaz.com पे जाइए, हमें आप वॉच भी कर सकते हैं, वहां पर हमें आप लाइव सुन भी सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं यहां से, लेट मी गिव इट फ्यू सेकंड्स, विल बी ऑन द अदर स्टूडियो। सुनते रहिए बख्या की न्यूज।
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
जी साहब नाजरीन, वेलकम बैक अगेन। एंड कहा था मैंने कि आप विद इन टू मिनट्स आई विल बी बैक। एंड 6478724900 हमारा फोन नंबर है। www.eawaz.com पे जाकर हमें वॉच करें या हमें सुनते रहें। आप लिए चलते हैं आपको आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। जी शाह,
हाँ जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबाब। आपको बताइए इनकी नई लोकेशन आ गई है, तो अगर आपको उधर बैठ के खाना है या ऑर्डर करना है तो आप नान एंड कबाब को कॉल कर लें 8416285-8191। इसके अलावा राजा बादशाह आपके $1775 बचा सकते हैं अगर आप उनको कॉल कर लें। आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है, और इनका नंबर है 6472903773। इसके अलावा विलेज टेस्ट, ये ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे है, इनकी भी नई लोकेशन आ गई है 2294 लेकशोर रोड वेस्ट ओकफिल के अंदर। अगर आपको ऑर्डर डालना है इनको तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9052262294 पे।
चांदनी विक्टोरिया पार्क की बात कर चलो, चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल इनकी वेबसाइट है, chandnivictoria.ca पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 2935 ड्रू रोड मिसागा में लोकेटेड, 1200 से 1400 लोगों की यहां पर कैपेसिटी है। 6479653823 इनका फोन नंबर है। डेंटिस्ट्री ऑल मिस सागा, अगर आपके बीवी बच्चों के दांतों में कोई खराबी है तो साहब आप फौरी तौर पर डॉक्टर नाजिया रहमान से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9058721100 इनका फोन नंबर है। ग्रिल एंड चिक के जनाब उनका कहना है कि बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन, 3525 Platinum Drive in Mississauga and 15 Montpelier Street in Brampton. www.grillandchick.com पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
जी अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो PMLN और MQMP जो है उनके बीच में अब अलायंस हो गई, और वो कह रहे हैं जी कि जो ये फरवरी 8 का इलेक्शन आने वाला है इसके अंदर हम जुड़ के, यानी कि जॉइंटली हम फाइट करेंगे। MQMP का डेलीगेशन लेड बाय खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफा कमाल, इनकी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, इनके मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट जो है लाहौर में PMLN का उसके ऊपर। यहां पर मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जी हमने एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ आगे चलना है और लोगों को ये जो करंट क्राइसिस है इससे हम बाहर लेकर आएंगे और पाकिस्तान को डेवलपमेंट के पैथ के ऊपर डालेंगे। उन्होंने कहा जी कि हम ہم جو ہیں بالکل تیار ہیں کوئی بھی جو کراچی کے اور سندھ کے پرابلمز ہیں اور اربن ایریاز دوسروں میں جو پرابلمز ہیں ان کو ہم کوآپریشن کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم کو ایک پروپوزل بنانا ہے بیٹھ کے سارے لیڈرز کو, اور اس کے بعد جو ہماری لیڈرشپ ہے ود ان 10 ڈیز وہ پروپوزل ان کے سامنے رکھنا ہے. اس کے علاوہ پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہیں ان کے بیچ میں خبریں آئی ہیں کہ زیادہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہ کافی ڈفرینسز ان کے بیچ میں آ رہے ہیں. اس کے اوپر پی ایم ایل این جو تھا ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا پی 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 نے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے سب کو نہیں دے رہے ہیں, پی ایم ایل این نے اس کو ڈینائی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ویسے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے الائنس بنائیں گے. اس کے اوپر پی 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 نے کہا تھا کہ ہم پھر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ ایڈریس کر رہے تھے پارٹی کے ورکرز کو گٹکی کنگڑ میں, اور انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے اپوننٹس کے خلاف یونائٹڈ طور پہ ہم بھی کھڑے ہوئیں گے اور ہم ویسے ان کو اپنے اپوننٹس کو ویلکم کرتے ہیں. رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے جی بی بی زرداری, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کی اور نواز شریف صاحب کی کچھ بات ہوئی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہوئے کہا جی کہ ہمارے تو دروازے پی 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 کے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں, اور ویسے جب اکٹوبر 21 کو نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے تو میرے والد صاحب نے ان کو کانگریچولیٹ کیا تھا اور ڈائلاگ تو ہمارا چلتا رہتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کے پرابلمز جو ہیں وہ صرف پی 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 جو ہے وہ حل کر سکتی ہے. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ چاہے کراچی میں ہوں چاہے کہیں اور بھی ہوں, یوتھ آف پاکستان خاص طور پہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو امپلائمنٹ ملے, آپ کے پرابلم سالو ہوئے, تو آپ صرف پی 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 کو پاور میں لے کر آئیں, اور ہم جب لے کر آئیں گے تو ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پرائم منسٹر جو ہے لاہور سے نہیں ہوگا, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیررزم کے ایشو کو بھی ہم بالکل ہیڈ آن ڈیل کریں گے, اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ورڈ اینڈ اسپرٹ کے اندر ہم امپلائے کریں گے تاکہ یہ ٹیررزم ختم ہو سکے. اس کے علاوہ زرداری صاحب جو تھے, ان کے والد صاحب جو ہیں آصف علی زرداری, انہوں نے کہا تھا جی کہ فیبرری 8 کا جو سورج ہے وہ میرے بیٹے کے اوپر چمکے گا اور اس کو جو ہے بہت میسولی وکٹری ملے گی. چلو بھائی بڑی اچھی بات ہے. ویسے بی بی زرداری صاحب آپ کی نانا جی نے بھی حکومت کی, آپ کی والدہ نے بھی کی, آپ کے والد صاحب نے بھی کی, پاکستان کے لیے کیا تیر مارے وہ ذرا ایک دو تیر ہمیں بتا دیں جو آپ نے آپ کی گورنمنٹس نے مارے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بڑا کوئی آپ نے ایشین ٹائیگر بنا دیا تھا پاکستان کو آپ کی گورنمنٹ نے, تو پھر ہم مان جائیں گے جی بالکل آپ ہی حل کرتے ہیں لوگوں کے مسئلے. بشیر میمن صاحب جو ہیں فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں, ان کو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس نے سندھ میں اپنا پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا ہے. ان کے جو پارٹی کے ہیڈ اس وقت ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے ان کو یہ جو بیوروکریٹ ہے ان کو چوز کیا تھا, اور شاہ محمد شاہ کو اپوائنٹ کیا ہے وائس پریزیڈنٹ. اس سے پہلے جو ہیں میمن صاحب نے پارٹی کو جوائن کیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ سندھ کی ریسپشن کمیٹی جو ہے اس کی آپ نے ساری تیاری کرنی ہے جب اکٹوبر 21 کو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. میمن صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا تھا سپٹمبر 29 کو. آج ایک بہت ہی سسپیشس بیگ جس کے اندر ایکسپلوسیوز تھے وہ اڈیالہ روڈ کے اوپر گورکھپور میں دیکھا گیا, اور یہاں پہ فورن پولیس کو بلایا گیا تاکہ, اور جو بام ڈسپوزل اسکواڈ تھا اس کو بھی بلایا گیا, تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر 1500 گرامز آف ایکسپلوزیو تھا. اب آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ اڈیالہ روڈ جو ہے صرف 1 کلومیٹر اڈیالہ جیل سے دور ہے, جہاں پہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ہیئرنگ چل رہی ہے, تو یہ بڑا ہی سورس آف کنسرن ہے آف کورس. لیکن بہرحال اس کو ساری چیز کو ڈیفیوز کیا گیا اور وہ اس کو پیکج کو ہٹایا گیا. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو پولیس نے کہا ہے کہ ہم کو ایک دن کی اور ان کے لیے فزیکل ریمانڈ چاہیے ہے, اور ان کو فراڈ کیس کے اندر ہم ریمانڈ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک کمپلیننٹ ہیں انہوں نے ان کو کہا جی کہ انہوں نے چودھری صاحب کو 5 million rupees دیے تھے, اور جس وقت انہوں نے مانگے ان سے تو چودھری صاحب نے ان کو بڑا تھریٹن کیا اور کہا جی کہ میں بالکل آپ کو نہیں دوں گا. پروسیکیوٹر عدنان علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ کورٹ کو آج جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ تھی اسلام آباد میں کہ یہ فراڈ کیس کے لیے ہم کو ان کو تھوڑا اور ریمانڈ کرنا پڑے گا تاکہ ان سے پیسے نکالے جا سکیں. اور یہ جو ہیں جب ہم نے ان کی گھر کی بھی تلاشی لی تھی تو ان کے پاس سے ایک پسٹل بھی نکلی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو پولیس نے ریکور کی, تو ہم کو اپنی پوری جو ہے انویسٹیگیشن کرنے دیں. ہندوستان کے اندر مودی جی نے آج کانگریس کو بہت زیادہ سلام کیا, بلکہ آج تو بڑے انہوں نے جو ہے ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائے کانگریس کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ کانگریس جس وقت بھی سینٹر میں پاور میں آتی ہے تو نیکسلائٹ جو ہوتے ہیں یا کہ میوئسٹ ہوتے ہیں ان کو شی دیتی ہے, یہ ان کو ایمبولڈن کرتی ہے, ان کو جو ہے بہت زیادہ بڑھاوا دیتی ہے. یہ آج یہ ایڈریس کر رہے تھے سورج پور کے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور وہاں پہ بات کرتے ہوئے چھتیس گڑھ کے جو چیف منسٹر ہیں بھوپیش بگلے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ انتہائی بیٹنگ اسکیمز جو ہیں ان کے اندر انوالوڈ ہیں, اور ان کا تو نعرہ ہے 30% کاکا खुले आम सट्टा, बागले जो हैं उनको काका कहा जाता है, काका जो है हिंदी में अंकल को कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी कि ये इन्होंने तो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है और अगर ये सेंटर में भी आ गए तो यही क्राइम और लूट घुसूट जो है वो जारी रहेगी, और ये तो हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं बीजेपी के उनको भी डरा धमका रहे हैं, एक हमारे लीडर को इन्होंने गोली मार दी है, और आप चाहेंगे कि इस तरह का जो क्राइम्स का और बॉम्ब्स का और गन्स का जो मुल्क के अंदर माहौल रहे उसमें आप लोग जिंदा रहना चाहेंगे? अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप बीजेपी को वोट दें, आप के पास चाहे जितना भी मर्जी पैसा हो लेकिन आप चाहेंगे कि शाम को आपका बेटा घर आए उसकी बॉडी ना आए, लेकिन अगर कांग्रेस आई सेंटर में तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा। अलीगढ़ नगर निगम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको कहा है कि जैसे दो साल पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कुछ अर्जियां दी गई थी नाम चेंज करने की, उसी तरह हम चाहते हैं कि अलीगढ़ का अब नाम जो है वो चेंज करके हरिगढ़ रखा जाए। आपको पता ही है कि अलीगढ़ तो बड़ा मशहूर एरिया है, वहां पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वैसे कहा जाता है कि 1700s में इसका नाम रामगढ़ था और मुसलमानों ने फिर इसका नाम अलीगढ़ रख दिया था। तो अब वापस ये सारे जो हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रही हैं कि इसका नाम हरिगढ़ रखा जाए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने 1992 में भी कहा था सेंटर को कि इसका नाम चेंज करें, लेकिन उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इनको डिनाई किया था, उन्होंने कहा था कि हम इसका नाम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बन के आए हैं उन्होंने काफी नाम चेंज किए हैं, फैजाबाद का नाम अयोध्या, अलाहाबाद का प्रयागराज, मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो नाम रखे गए हैं। आज एक इंतहाई फनी वाकया हुआ हिंदुस्तान में, आपको पता ही है प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि बहन है राहुल गांधी की, वो आज मध्य प्रदेश के अंदर एक रैली से बात करने के लिए पहुंची तो एक कांग्रेस का एंथुजियास्ट भागा भागा उनके पास आया और उनको फूलों का एक बुके दिया, लेकिन उसके अंदर फूल नहीं थे। जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो तस्वीर देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ पत्तियां थी और वो बड़े खूबसूरत एक कागज के अंदर लिपटा हुआ था। तो इवन प्रियंका गांधी जो कि बड़ी सीरियस होती हैं वो भी उसको देख के हंस पड़ी, लेकिन ये देख के वो जो कांग्रेस के लीडर थे वो भी बड़े शर्मिंदा हुए और फौरन वहां से चले गए और बाकी लोग जो है सोनिया प्रियंका गांधी के साथ हंसते रहे। तो ये आज काफी हाईलाइट रहा काफी हाईलाइट रहा ये हिंदुस्तान की खबरों में। दिल्ली की कोर्ट जो है जी उन्होंने सिंगर रैपर योयो हनी सिंह और उनकी बेगम जो है शालिनी तलवार, उनकी जो 13 साल की मैरिज थी उसका डिवोर्स का आज उनको ग्रांट कर दिया है, और प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट परमजीत सिंह जो है उन्होंने कहा जी कि ये अब सेकेंड मोशन जो फाइल की गई थी तो इनके बीच में इसका मतलब है सहमति नहीं आई है, और 2.5 साल से ये जो लॉन्ग लिटिगेशन चल रहा था तो उसके अंदर आज उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी डिवोर्स आज फॉर्मली अनाउंस करता हूं। अलबत्ता योयो हनी सिंह के जो चाहने वाले हैं वो आज बड़े उदास हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं उनकी फिल्म योद्धा, और कहा जा रहा था कि जो कैटरीना कैफ की फिल्म है मैरी क्रिसमस वो शायद टकराव कर सकती है 8 दिसंबर को, लेकिन आज दो पोस्टर्स अनवेल किए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जिसके मुताबिक अब उनकी फिल्म योद्धा जिसके के अंदर दिशा पाटनी भी होंगी वो अब March 15, 2024 में आएगी, जबकि कैटरीना कैफ की मूवी मैरी क्रिसमस अपने स्केड्यूल December 8 पे आएगी, तो इसलिए ये फुल एक्शन मूवी जिसका कि लोगों को बड़ा इंतजार था वो अब टकराव नहीं करेगी कैटरीना कैफ की मूवी से। बाबर आजम साहब जो हैं आज गोल्फिंग करते हुए अपने कोचेस के साथ नजर आए कोलकाता के अंदर, और इनके साथ थे इनके हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू पुटिंग और बोलिंग कोच मॉर्ने मोकल, और इस मौके पे ये सारे जो हैं वहां पे गोल्फिंग करते रहे उसका मजा लेते रहे। कुछ दूसरे जो थे प्लेयर्स वो जिम में गए और कुछ ने स्विमिंग की, और कुछ लोगों ने आज थोड़ी बहुत ही उनको इजाजत मिली तो उन्होंने शॉपिंग भी जाके की, हालांकि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा यहां पे सख्ती थी और पाकिस्तान की टीम को अलाउड नहीं था। श्रीलंकन कोर्ट ऑफ अपील जो है उसने स्क्वॉश किया स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा सिंघे के जो इन्होंने डिसीजन लिए थे कि सैक करेंगे हम क्रिकेट बोर्ड को उसको, और उन्होंने आज कहा कि जब तक फुल हियरिंग चलती रहेगी इन सबको जो है बोर्ड को री इंस्टेट किया जाए। इसके प्रेसिडेंट शमी सिल्वा जो थे उन्होंने चैलेंज किया था राणा सिंघे की इस चीज को, उन्होंने कहा था कि यह सबसे ज्यादा पैसे बनाता है और इसलिए इसको हमको नहीं करना चाहिए। श्रीलंकन बैटर जो है एंजेलो मैथ्यू उन्होंने आज बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान जो है सॉरी बांग्लादेश के साथ जो हम गेम खेल रहे थे उन्होंने बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और अगर ये चाहते तो ये रुक भी सकते थे تھے کیونکہ میں تو کریز پہ آ گیا تھا کھیلنے کے لیے, آپ کو پتا ہی ہے کہ ان کو ٹائم آؤٹ دیا گیا تھا شکیب الحسن کے کہنے کے اوپر, تو یہ جا کے انہوں نے امپائر میرس ایڈسمس سے کہا کہ بھائی اس کو ٹائم آؤٹ دیں, حالانکہ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے, رولز کے تو بالکل بیچ ہے, جو کہ جس کی کہ بات شکیب نے بھی کی, انہوں نے کہا کہ میں نے رولز کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے لیکن اسپورٹس کی اسپرٹ کے یہ خلاف ہے. اور جناب آج تو آپ کو پتا ہی ہے کہ افغانستان اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ میں ویسے مقابلہ تھا لیکن اصل میں ان دونوں کے بیچ میں کافی لڑائی بھی چلتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا بالکل افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ عورتوں کی جو کرکٹ ہے اس کو نہیں ہونے چاہیے, اس سے پہلے بھی بہت سارے جو میچز تھے انہوں نے کینسل کیے تھے افغانستان کے ساتھ ہوبرٹ کے اندر 2021 میں, اس کے علاوہ 3 میچ جو ODI سیریز UAE میں نے ہونی تھی وہ بھی, اور دوسرے بھی جو میچز ہونے تھے ایڈیلیڈ میں اس کے لیے بھی, لیکن یہ صرف جو ہیں ورلڈ کپس پہ ملتے ہیں جیسے کہ ابھی ملے ہیں, اور اس سے پہلے ان کی ایک بائی لیٹرل جو سیریز ہوئی تھی 2012 میں. اینڈ جناب ایبسولیوٹلی اور لاسٹ نیوز از اباؤٹ آسٹریلیا اینڈ افغانستان ان اے سٹننگ میچ, آسٹریلیا نے آج افغانستان کو ہرایا, اس سب کی ڈیٹیل ابھی ہمارے جو ایس ایکسپرٹ ہیں کیسر صغیر ان کے ساتھ اس پہ بات کریں گے اور ساری آپ کو ڈیٹیلز دیں گے, کچھ بات تو ماجد بھائی نے بھی کی اور باقی ڈیٹیلز ہم اپنے اسپورٹس سیگمنٹ میں آپ کو دیں گے.
اور اس کے ساتھ ہی بس کچھ اسپانسرز کے پیغامات لیتے ہیں اور اس کے فوری بعد ٹورانٹو گرد نوا میں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو سنوائیں گے مغرب کی اذان.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو.
ویلیج ٹیز اونٹاریو کا سب سے بڑا پاکستانی بفے 40 سے زائد آئٹمس کے ساتھ, انجوائے کریں ہمارے ڈیلیشیس مینی کو, کڑھائی, کریز, باربیکیو, باربیکیو پلیٹر, رولز اینڈ مچ مچ مور, اور اب ڈیلی ڈنر بفے اور ویکینڈ برنچ بفے بھی, پارٹی رومز یا کیٹرنگ سروسز کے لیے کال